ओम शांति। आज हम कर्म के सेटलमेंट या चुकतू होने के बारे में बात करेंगे। इस प्रक्रिया को हम कार्मिक अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। कर्म के बाबा ने मुरलियों में समझाए हैं, दो तरीके हैं सेटल करने के या चुकतू करने के, एक है भोग से और दूसरा है योग से। भोग से जो कर्म चुकतु होते हैं उसे हमें एक्सपीरियंस करके या फिर कोई न कोई वेदना या दर्द के थ्रू हमें एक फीलिंग आती है कि हम दर्द एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वैसे कर्म चुकतु होते हैं। और योग के थ्रू जो हम कर्म चुकतु करते हैं उसमें हमें ज्ञान या समझ होती है कि हम कर्म कैसे चुकतु कर रहे हैं या कोई ना कोई सेवा के माध्यम से हम कर्म चुकतु करते हैं। तो आइए बात करते हैं कार्मिक अकाउंटिंग के बारे में। पहला जो तरीका है भोग से कर्म चुकतु करना, इसके दो भाग हैं। इन दोनों भागों को हमने अंग्रेजी के शब्दों से नाम दिया है क्योंकि ये शब्द बेटर एक्सप्लेन करते हैं कि कर्म चुकतु कैसे होने चाहिए। पहला जो तरीका है भोग से कर्म चुकतु करने का, उसका नाम है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपने जो कर्म दिए हैं वह उतने ही पीड़ा या उतने ही फीलिंग या एक्सपीरियंस के साथ आपके पास में वापस आते हैं। वापस तो सभी कर्म आते हैं बट रेट्रीब्यूशन के कर्म में आपको गहरी पेन की फीलिंग आती है, वेदना की फीलिंग आती है, सफरिंग की फीलिंग आती है और जिस आत्मा के प्रति आपने जिस वृत्ति से कर्म किया है वह आत्मा आपके पास आके उसी वृत्ति से वह कर्म लौटाती है और कर्म की वापसी के वक्त आपको वेदना फील होता है। तो जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, समझिए मैं किसी जन्म में कोई वैद्य थी, मैं आत्मा वैद्य का रोल निभा रही थी या डॉक्टर थी और मैंने बहुत लोगों की ट्रीटमेंट की और ट्रीटमेंट मैंने कर्म के रूप में सही किया, मैं बहुत सारे लोग ठीक भी हो गए पर अंदर ही अंदर मेरी वृत्ति हमेशा ये रहती थी कि पेशेंट्स जो है वो बीमार गिरने का बहाना ढूंढते हैं या पैसे वक्त पर देते नहीं या कोई भी ऐसी वृत्ति विकर्मी वृत्ति। तो अंदर से बाहर से सेवा का रूप है पर अंदर से वृत्ति सही नहीं है। तो अब क्या होगा रेट्रीब्यूशन के कर्म में, इस जन्म में मैं आत्मा एक पेशेंट के रूप में जन्म लूंगी और मैं एक उन डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस करूंगी जो ऐसी वृत्ति से मेरी सेवा करेंगी। क्यों? क्योंकि यह लेसन है, यह प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है और ये ड्रामा अनुसार चलता है। ऑटोमेटिकली ये एक प्रक्रिया चलती है कि जिस वृत्ति से हमने कर्म किया उसी वृत्ति से कर्म वापस आएंगे हमें। तो ये एक रेट्रीब्यूशन का एक चक्कर चलता है, इसीलिए बाबा मुरलियों में कहते हैं कि ये कर्म का चक्र है। तो जब तक बाबा नहीं आते हैं हमें ये वृत्ति की बात समझ में नहीं आती है और हम इसी चक्र में घूमते रहते हैं, रेट्रीब्यूशन के चक्र में। कभी हम स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं, कभी अमीर बनते हैं, कभी गरीब बनते हैं और जिस भी बात को हम ठीक से समझे नहीं है या जिस भी बात को हम रियलाइज नहीं कर रहे कि हमसे क्या गलती हो रही है तो बार बार उसी कर्म के चोले को बदल बदल कर हम ये गेम खेलते रहते हैं। तो ये हुआ रेट्रीब्यूशन से कर्म चुकतु करना और ऐसा हमारे साथ लौकिक जीवन में भी होते रहता है जब तक हम बाबा के पास नहीं आते हैं या समझ या धारणा नहीं होती है। तो रेट्रीब्यूशन से कर्म ऐसे चुकतु होते हैं। जो सेकेंड तरीका है भोग से कर्म चुकतु होने का वो है रिपरकशन। रिपरकशन माना वापसी। रिपरकशन के जो कर्म है उसमें सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस हमारे पास वापस आता है या रिजल्ट वापस आता है। इसमें अधिकतर डायरेक्ट कोई वेदना की फीलिंग नहीं होती है या दर्द की फीलिंग नहीं होती है, पर वो भी कर्म हमें भोग के ही चुकतू करने पड़ते हैं। जैसे समझिए, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि किसी ने किसी को बहुत अन्न दान दिया या बहुत विद्या दान दिया, तो वह अगले जन्म में जाकर बहुत ही ऊंचे खानदान में या फिर ऐसे खानदान में जहां उसको बहुत पढ़ाई और अपॉर्चुनिटीज मिले, ऐसे जगह पर जाके पैदा होगा। तो ये जो है, ये है रिपरकशन के कर्म, माना कर्म जो दिए वही कर्म अभी सामने से वापस आ रहे, ये कॉन्सिक्वेंस है, इफेक्ट है आपके कर्मों का। पर कई बार ज्ञान में आने के बाद ये रिपरकशन के जो कर्म है वो भी भोग का कारण बन जाते हैं। वो कैसे, समझिए सॉरी समझिए कि मुझे लौकिक लाइफ में किसी को बहुत अन्न खिलाने की आदत है या थी, और मैंने बहुत लोगों की ऐसे अन्न खिलाकर आवभगत की है। अब जब मैं बाबा के पास आती हूँ और एक धारणा ले लेती हूँ कि मुझे ज्यादा किसी से अन्न के कर्म जोड़ने नहीं है, तो वो जो आत्माएं जिनको मैंने कर्म दिए थे वो अभी मुझे वापस पुकारने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक ड्रामा की प्रक्रिया है कि जैसे हम राजयोग के शुरुआत में चलने लगते हैं, तो पहले जो हमारे पास्ट के लेनदार और देनदार वो हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसमें बाबा की कोई मर्जी या हाथ नहीं होती, ये ड्रामा अनुसार ये चीज चलती है। और फिर हमें एक फीलिंग आती है, ये कर्म अच्छे कर्म है। लौकिक वे में आप देखे तो लोग कहेंगे वाह इतने लोग आपको खाना खाने बुला रहे, पर आप जब भी बाबा के पास आ जाते हो तो आपको फीलिंग आती है कि जब मैं ये माया छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो ये आत्माएं मुझे और क्यों पुकार रही है। तो ये इसलिए क्योंकि ये आपके ही रिपरकशन के कर्म है, जो कर्म आपने इस जन्म के शुरुआत में हिस्से भी दिए हैं वो सारे कर्म आपके सामने वापस आती हैं। इसीलिए राजयोग की जो पहली शक्ति है वो है पावर टू पैकअप। जब आप कोई भी चीज को पैकअप करते हैं, जैसे आप इस कर्म के बिजनेस को भी पैकअप करते हैं बाबा के पास आकर, तो ड्रामा में आपके क्रेडिटर्स और डेटर्स आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तो उससे भी कई बार हमको भोग की फीलिंग होती है। तो इसमें डायरेक्ट वेदना या दुख नहीं होता है, पर आपको जैसे ये कर्म झेल के खत्म करने ही पड़ते हैं। तो ये हुए रिपरकशन के कर्म। रेट्रीब्यूशन और रिपरकशन के ये जो कर्म है वो बहुत करके हमारे स्पिरिचुअल बचपन में ही शुरू हो जाते हैं। तो कई लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि जब हमने ज्ञान का ये ज्ञान योग का रास्ता चुना तो अभी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स या बीमारियां ऐसी चीजें क्यों आ रही है। ये इसी वजह से होता है कि आपके जो रिपरकशन और रेट्रीब्यूशन के कर्म है वो ड्रामा अनुसार आप जब ज्ञान योग शुरू करते हैं तो पहले ही ड्रामा ऐसे प्रोग्राम करती है कि वो पहले ही शुरू में ही चुपतू हो जाए। इसीलिए जो भी सीनियर या टीचर कोई जिज्ञासुओं को समझा रहे हैं या नए आगंतुक है उनको ये बात आप बता सकते हैं कि ये भोग के कर्म है और इन्हें जल्दी चुपतू करने हैं। तो भोग के जो कर्म चुपतू करने का एक तरीका ये भी होता है कि उस वक्त हमारी धारणाएं गहरी नहीं होती, पर शिव बाबा से हमारा कोई कनेक्शन जुट जाता है तो हम बाबा से बार बार युक्तियां ले कि कैसे इन कर्मों को चुपतू करें। बाबा से इन कर्मों को हम टरकाए नहीं कभी भी, क्योंकि यदि हम इन कर्मों को टरका दे तो आगे चलकर जब हमारी राजयोग की स्टेज अच्छी बन जाती है तो यही कर्म जो हमने शुरू में दिए नहीं या लिए नहीं वो वापस उस टाइम माया का कारण बनकर वापस आती है। समझिए, मैंने किसी का अन्न खाया है और मैं राजयोग में आने के बाद बहुत लोग मुझे शुरुआत के दिनों में वापसी देने के लिए वो आत्माएं बुलाती है, पर मैं ड्रामा की बात न मानकर मैं कट्टर रूप से कहती हूँ कि नहीं, अभी से मैं किसी का अन्न खाऊंगी नहीं। तो कई बार ऐसे होता है क्योंकि कर्म जो दिए हैं वो बाबा के आने के पहले हमने दिए हैं, तो उसके अकाउंटिंग ड्रामा अनुसार ही होनी है। तो कई बार ऐसे होता है कि आगे चलकर 10-15 साल बाद ऐसे कोई हमारे थॉट्स चलते हैं कि हम फिर से उस माया के इसमें चले जाते हैं, क्योंकि वो कर्म हमारे पीछे छूट गए थे और हम फिर से वो अन्न खाने लग पड़ते हैं या ऐसी कोई चीज कर पड़ते हैं। तो इसलिए बहुत करके बाबा के बच्चों को ये ध्यान रखना है कि राजयोग के स्पिरिचुअल बचपन में, शुरुआत के दिनों में ही, जब आपकी धारणाएं बहुत पक्की नहीं हो, तभी ही आप रिपरकशन और रेट्रीब्यूशन के कर्मों को चुकतू कर दे। ये कर्म बाबा के आने के पहले बने थे तो ये ड्रामा अनुसार चुकतू होंगे। इन कर्मों के चुकतू करने का, इस कार्मिक अकाउंटिंग के प्रोसेस को रोके नहीं, इसे टरकाए नहीं, इसे बाद के लिए छोड़े नहीं, क्योंकि ये फिर हमारे कर्मातीत वाले स्टेज को इफेक्ट करती है और हमारी स्टेज को बाद में 5-6 साल बाद नीचे ले आती है या माया का कारण बन जाती है। इसलिए इन कर्मों को देकर चुकतू करें। और बहुत बार यदि आपके घर में कोई विपरीत आत्मा है जो बार बार आपसे क्वेश्चन करती है कि आप ऐसा क्यों नहीं खा रहे, या कैसे भी, जैसे जो भी कोई भी विपरीतता की बात होती है, तो मन ही मन अपने लिए धारणाएं पक्की करें और उनके लिए कह दें कि आपको जो कर्म चाहिए हम वापस दे देंगे। यदि आप कर्म दे देंगे तो वो आत्मा भी आपको फ्री छोड़ देगी और बाबा की भी दुआओं से आप आगे निकल जाएंगे। ऐसे बहुत ब्राह्मण बच्चों के जो बचे कुचे रिपरकशन और रेट्रीब्यूशन के कर्म रह जाते हैं, वही बाद में माया का या दुख का कारण बनती है ज्ञान के लाइफ के बाद में। और कई बार कई रेट्रीब्यूशन के या रिपरकशन के जो कर्म हैं, उसको समझे बिना हम उसी चक्र में भी फिर से फंस जाते हैं। एक उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे मैं समझिए मैं 10-12 साल ज्ञान में चल रही हूँ, पर बाबा ने कहा है कि अभी मुझे लेन देन दुनिया से कम करना है, पर यदि मेरे में ये संस्कार रह गया है कि मैं अभी भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा बात करने की या जो भी कोई कार्मिक इंट्रैक्शन रखने की नेचर है, शादियों में आना जाना होता है या जो भी हो, तो कई साल गुजरने के बाद भी ये संस्कार परिवर्तित न होने के कारण फिर से इसका रिपरकशन आता है और फिर से ज्ञान में होने के बावजूद भी हम रिपरकशन के चक्र में घूमते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हमारे शुरू के रेट्रीब्यूशन और रिपरकशन के कर्म चुकतू हो जाए, उसके बाद हम कोई भी नया कर्म स्टार्ट करने के पहले शिव बाबा से योग में अमृत वेले डायरेक्ट हम शिव बाबा से परमिशन ले, या जो भी हमारे कोई सीनियर या निमित्त है उनसे हम परमिशन ले कि हम ये नया कर्म कैसे स्टार्ट करें, ताकि हम फिर से उस रिपरकशन के चक्र में फंसे नहीं। नहीं तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी और आपकी कर्मातीत वाली स्टेज दूर होते जाएगी। इसीलिए कर्मों के चक्र में फंसना नहीं है, तो कोई भी नया कर्म अभी ज्ञान में आने के बाद स्टार्ट करने से पहले अमृत वेले में मॉर्निंग शिव बाबा से पहले एडवाइस ले, या कोई सीनियर से एडवाइस ले, या किसी सीनियर के लाइफ को देखकर समझें कि वो कैसे कर्म हैंडल करते हैं। तो ये तीनों तरीके अपनाने से, युक्ति अपनाने से, रिपरकशन और रेट्रीब्यूशन के जो कर्म हैं वो खत्म होते जाते हैं और हम जल्दी जल्दी भोग के इन कर्मों को चुकतू कर देते। तो अंत में ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि कार्मिक अकाउंटिंग में भोग से, रिपरकशन से और रेट्रीब्यूशन से कर्म चुकतू होते हैं, रिट्रीब्यूशन के कर्मों में आपको वेदना की फीलिंग आती है और आपको वैसे ही वो कर्म लौटाने पड़ते जैसे आपने पहले किए थे। रिट्रीब्यूशन में आपकी प्यूरिफिकेशन भी बहुत होती है और रिपरकशन के कर्म में वापसी होती है और इसमें अधिकतर दर्द की फीलिंग नहीं होती है, बट आप वो कर्म लेने के लिए यदि रुक जाते हो तो आपका जो स्पिरिचुअल टाइम है जो अभी शिव बाबा का है वो कर्म वेस्ट टाइम वेस्ट हो जाता है और वो कर्म आपको किसी न किसी फिर से चक्र में फंसा देते हैं। इसलिए युक्ति यूज करें, पेशेंस यूज करें और नए कर्म शुरू करने के पहले शिव बाबा से या कोई निमित्त से परमिशन लेके फिर अपने कर्म स्टार्ट करें। तो ये था पहला तरीका भोग से कर्म चुकतु करने का, रेट्रीब्यूशन और रिपरकशन। अगली बार हम बात करेंगे योग से हम कैसे कर्म चुकतु कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।